जब जोर से कहते तब उसको पुकारना होगा, केवल ऐसे जोर से चिल्लाने से वो नहीं होगा, पुकारने का ही तात्पर्य। रो रहे हैं जोर से, और उस समय में रोने का स्वर जो है वो साफ नहीं निकलेगा, तो इसको कहेंगे पुकार, अने तो हो जाएगा पुकारना। पुकारने और पुकारने में अंतर है। तो पुकार पुकार को है वह देवदयम दाक्षिण्य प्रकाश यतः, हे प्रभु हमारे प्रति आप दाक्षिण्य प्रकाश करें। दाक्षिण्य माने ऐसे हाथ कर दीजिए, अब निराकार तुम अभय हो, ऐसा आप प्रार्थना मैं करता हूं। कृपा दृष्टि एक बार करो हो सिंचन, एक बार अपनी कृपा रूपी वृष्टि से, दृष्टि से वृष्टि और उससे सिंचन करें, तबे ए जनेर प्राण होई वे रक्षण, तभी हमारा प्राण रक्षित होगा अन्यथा। ऐसे कहते हुए हरे कृष्ण 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 भगवान क्रमशः मधुर शास्त्रित हरि कीर्तन हरि नाम कीर्तन करेंगे। कैसे? मई प्रसादम मधुरई कटाक्षै वंशी निनादानुचरै विधेहि त्वयि प्रसन्ने कि महापरैर्न, त्वयि प्रसन्ने कि महापरैर्न। मत मंगल जी हो रो रो करके, भिन्न मंगल जी रो रो करके कह रहे हैं मई प्रसाद मधुरै कटाक्षे, ओ प्रभु मधुर कटाक्ष के साथ में बंसी निनाद के द्वारा। बंसी निनाद कैसे? मधुर कटाक्ष, और उस कटाक्ष के द्वारा हमें बुला रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अमा के प्रसाद करी तव पद लह, आप अपने चरणों में हमें ग्रहण करें, माने बुला करके। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। तब ये और हम जा रहे हैं वो ये, और कृष्ण ही बुला रहे हैं। कैसे? ऐसे जाने से कभी हो सकता कि हम न जाएं, और यदि कृष्ण बंसी ध्वनि और अपना मुखार बिंद उसमें भी अपने कटाक्ष से कृपा कटाक्ष को से यदि हमको बुलाए ना, और यदि बुला करके अपने सेवा में नियुक्त कर दें, बस ये है मधुर भाव। प्रसन्न है ले तुम्हें अन्न प्रसन्नता, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई प्रसन्न हो और न हो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं और जगत अप्रसन्न है तो वो क्या कर लेगा, और आप यदि प्रसन्न नहीं है जगत ही प्रसन्न रह करके हमारा क्या करेगा। इसलिए दूसरों की अप्रसन्नता की और प्रसन्नता का भय मुझे नहीं, बस आप प्रसन्न हो। यदि भगवान का कोई भजन करता है ना? कोई भी भगवान का प्रसन्न भजन करता है, भगवान प्रसन्न हो, और भगवान का भजन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ऐसा कहीं है? कहीं भी नहीं। वो तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं बहाना कर रहा हूं, उसी बहाने तुमको लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि भगवान का भजन कर रहा है और विश्व या उसके सभी लोग उस पर नाराज हैं तो उसका क्या होगा? बिगड़ेगा कुछ की नहीं? वक्त कहता है तुम प्रसन्न रहो, और कोई भी बात नहीं, भगवान प्रसन्न रहे। और भगवान नाम के द्वारा हरि कथा श्रवण के द्वारा ये प्रसन्न है, उनकी आराधना से प्रसन्न जरूर प्रसन्न हो, और भगवान देख रहे हैं कि हमारा भजन, तब फिर कोई प्रसन्न हो रहा है ठीक है। और हिरण्यकश्यप जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसका विरोध यदि किया, प्रहलाद महाराज जी ने भी कहें, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको क्यों मारते हो क्यों गाली देते हो, मैंने क्या आपका बुरा किया, कहा कभी कुछ नहीं, कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप रहे, क्योंकि भगवान प्रसन्न है मैं जानता हूं। तो ये क्या कर रहे, मर भी जाऊंगा तो क्या कर रहे हैं, ये शरीर पुनः काट, किंतु और यदि उनकी वो भी रहेगी इच्छा तो वो नहीं कर सकते। एक आदमी ग्रास लेने भोजन करने जा रहा है, और ग्रास उठाया कॉल उठाया यहां तक ले गया, कोई जरूर है जो मुख में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, कोई ठीक है वहां से भी नहीं पहुंचेगा। उसी समय बंदर, आजकल बंदर कोई सुनते हैं कि कहीं से कुछ, यहाँ का बंदर अभाव हो गया था तो म्यूनिसिपैलिटी ने बंदर मंगा लिए, यहाँ बंदर खूब आ गए हैं, खूब बंदर आया और लेकर के साथ साथ रोटी कर रहे, तवा से ही रोटी उठा लेकर के चला गया। कोई ठीक नहीं, ये कॉल ग्रास जाएगा कि नहीं। इसलिए यदि आप प्रसन्न है, प्रसन्न हो ले तुम्हें अन्न प्रसन्नता प्रयोजन किवा मुरे, मुरे लिए क्या प्रयोजन है जो कोई प्रसन्न, बस भगवान प्रसन्न हो। किंतु हम कहेंगे जैसे भाई पहले सब ये सब घर का काम कर करके तो भगवान का भजन कर, किंतु घर का ये सब बिगाड़ करके भजन करना ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। अब घर का कौन काम ठीक है कौन बेठीक है ये कौन विचार करेगा, ये व्यास जी विचार करेंगे ना, सुखदेव गोस्वामी, नारद, न हिरण्यकश्यप विचार करेगा, दुर्योधन कौन विचार करेगा, ये सब देखना है। कैसे घर बनता है कैसे घर बिगड़ता है ये विचार किसके ऊपर है, ये सब विचार करेगा। ए मोर कथा तो प्रसन्नता बिना अन्य प्रसाद की कार जमार बोलो कहीं आबादी, मैं आबाद होकर बिना बाधा का मैं ये बोलता हूँ, निष्कपट होकर के कारण आप यदि प्रसन्न है तो सब प्रसन्न, आप नहीं प्रसन्न है तो कोई प्रसन्न होकर के ही क्या करें, हिरण्यकश्यप हमारे ऊपर में खूब प्रसन्न हो जाए क्या कर लेगा, हमारा धन धान और ये सब चीज दे देगा। किंतु जब भगवान आएंगे नहीं सिंह देव ना, तो फिर उसी का ही कुछ ठीक नहीं, तो हमारा हमारी क्या रक्षा करेगा। और भगवान यदि प्रसन्न है ने? तो सब सभासद लोग एक तरफ में, कर्ण और दुशासन दुर्योधन सब एक साथ में, और अकेली द्रौपदी, वो भी कोई चेष्टा नहीं, वो भी यदि वो कम बलवान थी यदि उसे में झपट पड़ती तो फिर क्या होता फिर निकल जाता उन लोगों का, वो कम नहीं थी और उसी समय में भीम अर्जुन सब खड़े हो जाते, युद्ध लग जाता। किंतु निश्चेष्ट है, अच्छा देखो तो प्रभु क्या करते, देखो जैसे सब बात हो गया। इसलिए भक्त लोग निर्भय होकर के भगवान का भजन करें, कभी भी डर की कोई चिंता नहीं। अरे मरेंगे तो मरेंगे माने क्या, ये शरीर छोड़ करके कहीं फिर जन्म लेंगे, फिर वहां से भजन करेंगे, वो भी चला जाएगा, फिर तीसरे से करेंगे, अरे यहां से करेंगे ना, यहां से कोई खदर देगा मथुरा से मैं बंगाल चला जाऊं, वहां से खदर देंगे गुजरात चला जाऊं, वहां से कहीं चले जाएं तो और चले जाएंगे। वैसे ही इस जन्म से इसको काट दिया तो फिर कहीं दूसरी जगह जन्म हो गया, फिर तीसरी जगह जन्म हो जाएगा। डरने निर्भय होकर के भगवान का प्रहलाद महाराज को ऐसी निर्भीकता, एकम शरणागति एकम साधारण शरणागति भजने रवि शरणागति भाव अभी तृतीय ज्ञान और ओ दिगे जब जाब तक अभी साधा एक निष्ठा सह करिले कीर्तन, ऐसे निष्ठा के साथ, निष्ठा माने निष्ठा निश्चय एकदम बुद्धि स्थिर करके, इसका नाम है निष्ठा, उसमें अवस्थित होकर के, अब अपचिलत होकर के, निर्भीक होकर के, अचंचल बुद्धि हो करके ने? भगवान रक्षक हैं, पालक हैं, भगवान का तब कोई शोक मोह भया पहा शोक मोह सब कुछ ऐसा निर्भीक नहीं होने से बिल बिला रहे हैं, भगवान का नाम रहे जप रहे हैं बिल बिला, अरे किस लिए बिल बिला, अरे कल ना तो परसों तो मरना है ठीक, अरे वृंदावन में हजारों आदमी हजारों लड़कियां स्त्रियां भजन नहीं कर रही, नाम करने से कौन रोक देगा, जहां रहेंगे वहीं पर भजन कर, पेड़ के नीचे भजन हम भी करेंगे, भीख मांग करके करेंगे, जैसे तैसे करेंगे। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदांग व्यक्तियों का किस लिए हम ऐसा करेंगे, उनके बात के अनुसार हम भजन करेंगे, प्राण जाय बल भजन न जाए, प्राण भले ही चला जाए भजन हमारा नहीं जाएगा, ऐसा निष्ठा करके भगवान का भजन एक उपनिष्ठा सह करिले कीर्तन अचिरे हईबे रुचि पावे, तब इसके बाद में रुचि हो जाएगी उपनिष्ठा। ऐसे भजन करो तो देखो तो क्यों नहीं रुचि होती है। पूर्वाह्न काले लीला यही रूप है। नमाश्रय काले चिंता करो महाशय, हे महाशय आपको रुचि अब उत्पन्न होने जा रही है, इसलिए हे महाशयों अब पूर्व काल पूर्वाह्न काल में जो लीला होती है उसके साथ ही इसको मिलाओ हरिनाम। ये तो हुआ निष्कपट होकर के शरणागत होकर के बुद्धि को स्थिर करके ना, और जब ये आशा होने लगे तो उसमें कुछ नमाश नाम रूपी रस उसमें लगा दो, और वो तृतीय प्रहर की लीला प्रातः काल हो गया है। श्रीमती राधिका जी को बुलाया गया है कुंदलता के द्वारा नंद भवन में यशोदा जी के, आकर के उन्होंने बड़ी सुंदर रूप से रसोई बनाई, सब सखियां मिलकर के रसोई बनाई। जो श्रीमती जी कृष्ण के विरह में जाड़े के दिनों में भी शीत बर्फ उनके सामने आकर के पिघल रहा है, गर्म हो जाता है, कमल के फूल बहुत ठंडे होते हैं वो सूख जाते हैं, और वही राधिका जी 1000 चूल्हे जला दिए गए और उसके बीच में खड़े होकर के कलछी चला रही हैं, रसोई बना रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, और उनको क्या हो रहा है,
आनंद हो रहा है,
आनंद हो रहा है, उनको तनिक भी ताप नहीं लगता है, और वहां पर ऐसे ही ताप लग रहा है। अब वो रसोई बन गई, पूर्वांग ने धेनु मित्री विपिनम अनुषितम गोष्ठ लोकानुजातम कृष्णम राधा तिलोलम तदपसिति कृते प्राप्त तत्कुंड तीरम राधा अंचालोक्य राधांचलो आलोक्य कृष्णम कृत गृहम गृह गमनात् आर्जा अर्कार्चनायै दिष्ट्वा कृष्ण प्रवृतायै प्रहित निज सखी वर्त्मनेत्रं स्मरान। ये रूप गोस्वामी जी का ये तृतीय श्लोक है, इसमें ये पूर्वांग लीला का वर्णन है। रूप गोस्वामी का 8 लीलाओं के लिए 8 प्रकार के लिए 8, और एक श्लोक है सबका मिलाकर, बस उनका यही है 9 श्लोक बनाया, एक श्लोक में सब 8 हो 8 हो जाम, और एक एक श्लोक एक एक जाम के लिए। इसके बाद में जी गोस्वामी ने भावनामृत
चक्रवर्ती ठाकुर
सना पीछे
जी
गोस्वामी ने
कृष्ण भावनामृत,
और इसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने
कृष्ण
भावना, और कवि कर्णपुर ने एक ग्रंथ किया अष्टकालीय लीला। ये सब को मिला करके वैष्णव लोग उस पद्धति से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीला वही सबसे अधिक प्रसिद्ध, और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कृष्ण भावना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के करीब करीब अधिकांश माने सभी ग्रंथ ही राधानुगम है, सभी ग्रंथ। तो बतला रहे पूर्वान्न माने अन्य माने दोपहर के पहले कृष्ण भोजन कर लिया, तो जसमती वो है ना भज भगवत वत्सल गौर, कृष्ण ने भोजन किया, राधा जी के तरफ में आंखों से देख करके कोने से राधिका रहेरी नयन कोने नयन के कोने से देख रहे हैं, और लड्डू खा रहे हैं, और मधुमंगल लड्डू खाता हुआ ये कांख बजा रहा है ऐसे ऐसे भक्त लोग सब लोग एक साथ में बैठ गए, कभी कभी दिन में नहीं रात में, रात में सब लोग बैठते हैं तो उसमें उपनंद नंद सुनंद अभिनंद
नंद
और गुरु जी भी उनके उनको बुला लेते हैं, भागवरी को, संदिग्ध ऋषि को और सबको बुला लेते हैं, और सब बच्चों को बुला लेती हैं जसोदा मैया, और सारी सारी लाइन लाइन करके अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर के उस समय नंद बाबा अपने दाहिने इस पर जंघे पर बलदेव जी को और बाएं तरफ में पहले हाथ से उठा करके बलदेव जी को खिलाते हैं, फिर कृष्ण को खिलाते हैं, दोनों का पेट जब भर जाता है थोड़ा थोड़ा तब फिर उसी में से अपने लेते हैं, और उस समय में तरह तरह की लीलाएं होती हैं खाने के समय, बहुत तरह की। उस समय इसको माने प्रसाद पाने का ये विलास है। कभी कभी राधिका जी उनको जसोदा जी ने आदेश दिया, अरे उस लड़की को भेज देना राधा जी को, राधा जी को ना ऐसे ही कह दिया लड़की छौड़ी को या लाली को भेज दो, लाली पूरी पका रही, अरे थोड़ा सा पूरी लेकर के आ जाओ बेटी। बार बार कहने से रोहिणी ने कहा कि सारे मैं व्यस्त हूँ, थोड़ा सा जल्दी से मांग रहे हैं, जल्दी दे। वहां पर गई और जहाँ सामने गई बस हाथ से सब कुछ गिर गया, बस भग करके लाली चली गई। इस तरह से विशेष करके मधुमंगल और कृष्ण इत्यादि जसोदा मैया लाती हैं, और ये कहता है ये पेटू रोगी आदमी इसको कुछ खा नहीं सकता, अरे मैं खूब खाने वाला मुझे दीजिए, उनको वो लेता है। और इधर में जसोदा जी जल बुलाने जाती हैं तो लेकर के सब लोगों में डाल देता है, मैंने खा लिया अब ले आओ। इस तरह से बड़े आनंद के साथ में लोग खाते हैं। खाने के बाद में आचमन किया बलदेव स्वामी बलदेव प्रभु के साथ, और पासी में उनका विश्राम करने का कक्ष है, उसमें जाकर के सखाओं के साथ में जाकर के थोड़ा सा विश्राम नहीं उस समय में विश्राम का एक घर है जो रसोई घर और कृष्ण के घर के बीच में है, वहां पर उपस्थित हो गया। वहां पर थोड़ा सा विश्राम किया, और उसी समय में वो क्या जाम्बूल और रसाल आमे तांबूल मसाला, वो तांबूल और मसाला लाते, सब सखाओं को बाप करके विधिवत कृष्ण सुन, और उसी समय में जोशोदार आज्ञा पे धनिष्ठानी श्री कृष्ण प्रसाद
राधा
वो राधिका जी को बुलाती हैं, जसोदा जी अब तुम भी बेटी खा लो लाली, देखो वो हमारा पुत्र है उससे कम तुम हमारी नहीं लड़की है, तुम भी खा लो। अरे वो तो हमारे सामने खिलाया, मैंने उसे खिलाया परोस करके, बेटी तुम देखो तुमको तुम बैठ जाओ हम खिला देते, बस उसको गोदी में लेकर के खिलाने की चेष्टा करती हूँ और लज्जा के मारे में खाती, जब नहीं खाती तो यदि खा लेती तब तो गड़बड़ हो जाता, नहीं खाएंगे कुछ कारण है। अब वो जितना जो कुछ था जो बनाया गया था राधा जी ने और सखियों ने रोहिणी मैया ने जो कुछ बनाया था वो रखा है, वो रख करके और धनिष्ठा के द्वारा भेज रही हैं, वहीं पर अभी वहीं पर हैं, रात वाला भेजें और यहाँ वाला भी अभी वहीं पर है, अभी वो बैठ उनको बैठा दिया। धनिष्ठा ने बड़ी चातुरी से कृष्ण का अवशिष्ट था उसमें लिया और उसमें मिला दिया, ये किसी को मालूम नहीं था, और उसी को लेकर के राधा जी के पास में गई, सब सहेलियों को साथ में लेकर के, और वहां से बेटी मैं अभी यहाँ पर दूसरे काम में लग रही हूँ तुम लोग खा लो, और ये सब लोग मिल करके सबको दिया, और बड़े मजाक हंसी के साथ में उन्होंने लिया। लेने के बाद में कृष्ण साथ में मिलन भी हुआ, इसके बाद में कृष्ण अपने सखाओं के साथ में धेनु मित्र बृंदई बृंदम यानी बृंदई सह धेनु सह धेनु और मित्रों के साथ में विपिनम अनुसितम वन में जाना आरंभ किया, वन के लिए यात्रा की। किंतु गोष्ठा गोष्ठ लोकान यातम, गोष्ठ जो के जो लोग थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, उपानंद और जो ब्राह्मणिया थी और सब लोग थे, सखा लोग हैं, सखियां हैं, सब लोग उनके पीछे पीछे। यशोदा मैया बार बार जाती हैं, कृष्ण को आलिंगन करती हैं, रोती हैं और फिर कृष्ण शपथ देते हैं, फिर लौट आती हैं, फिर गैया की भांति बछड़े के पास में फिर पहुंच जाती हैं। बहुत कहने पर शपथ देने, मैया आप मत जाना, बहुत दूर हम लोग गोष्ठ में आ गए। मैया खड़ी हो जाती है, अब बाबा जो है ना अब चलने लगे, अब तक चल रहे थे गौण रूप में, अब प्रधान रूप में, और बेटे को लेकर के आलिंगन करते हैं, आंख से आंसू आता है, सबको आदेश देते हैं इसको अधिक दूर मत ले जाना, पासी से इसको लौटा दे। फिर बाबा इसको पाकर के आगे चलते हैं, फिर बाबा पहुंच जाते हैं, उनको भी शपथ दिया, वो भी अब खड़े हो गए। अब गांव वाले चलने लगे, स्त्रियां चलने लगी, उनको भी ऐसे रोका। और इसके बाद में सखा आगे थोड़ा सा चले गए, बलदेव प्रभु जी आगे चले गए, अब गोपियां रह गई। अब उनको बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सूनु जस्या कटाक्ष सरघात निश्चितस्य तंग्राधिका परचरामि कदा। वहां पर कृष्ण की बंसी हाथों से गिर जाती, मुकुट गिर जाता है, कपड़े पीतांबर गिर जाते, और यदि उन्होंने कटाक्ष भर करके उनके तरफ में देखा तो कृष्ण भी टलमल होकर के गिर, इतने मधमल का था उनको पकड़ करके, अरे जरा होश में आओ, देखो तो कौन है साथ में, ने नंद बाबा देखा, बस फिर अपने को संभाला। ऐसे करते करते कृष्ण राधा लोलम वन में जा रहे हैं, किस लिए, धेनु सहचर संगे कृष्ण बन जाय रंगे गोष्ठ जान जनु व्रत हरि राधा संग लोभ पुनम राधा कुंद तट बनम जाय धेनु संगे परिहरि कृष्ण रही नीत पाइया राधा नीज गृह जाइया जटिनाय नय सूर्याचने गुप्ते कृष्ण पथ लखी कतखने आई से सखी व्याकली राधा स्मरी मने। इस प्रकार से भजन करेंगे। इधर तो कृष्ण को विदा कर दिया, जब तक धूली उड़ती रही, जब तक गायें चली गई, गायें ओझल हो गई, कृष्ण सब लोग ओझल हो गए, धूली उड़ती रही तब तक वहीं पर सब खड़ी रही। नंद बाबा यशोदा अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के उच्च स्थान पर चले गए और वहीं से उनको देख रहे हैं। कृष्ण भी अंतिम उन लोगों को विदाई दे करके चले और बार बार पुनः पुनः गायों को संभालने के लिए पीछे आते हैं और इनके तरफ मुड़ मुड़ करके देखते हैं। अंत में संकेत से बतलाया, हम लोग कुसुम सरोवर में मिले अथवा सूर्य कुंड में मिले, राधा कुंड में मिले। कृष्ण रेंगी तो पैया, अब राधा कुंड तट राधा अंग लोभे पुनः राधा कुंड तटे बन, राधा के संग के लिए वो राधा कुंड में उपस्थित होते हैं। जाय धेनु संगी परिहरी, धेनु और संगियों को सखाओं को छोड़ करके मैं भी आ रहा हूं, और उनको मोहित कर दिया। वो सोच रहे हैं कि कृष्ण अभी यहीं पर हैं, जरा क्लांत हो गए होंगे, बस हम लोग का आदेश है जरा गौरों को देखो, इतने में कृष्ण चले जाते हैं, संगों में छल करके उनको चले जाते हैं उनसे। और इधर में कृष्ण की इंगित पा करके राधा ने जब गृह गया ना, वहाँ से घर गई जावट में, और जटिला से सूर्याचन के लिए, सूर्य पूजा के लिए आदेश लेकर गुप्त कृष्ण पथ देखी लखी, गुप्त रूप में वहां पर पहुंच गई कुसुम सरोवर, वहां पर उनके लिए रास्ता देख रहे हैं। फिर उनको छल बल करके उनको विपक्ष को उनको चंद्रावली प्रकृति को, और फिर कृष्ण को राधा कुंड से सूर्य कुंड में ले गए। कतोखने आई से सखी व्याकुलित राधा स्मरणीय, वहां पर सूर्य पूजा करने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए उपस्थित हुई, और ये सूर्य पूजा के ब्राह्मण छात्र बन करके हाथ में लठिया बगल में पोथी और ज्योतिषी बन करके वहां पर पूजा करने के लिए उपस्थित हो गए। इन सब लीलाओं का स्मरण कोई साधक करे यदि ऐसा हो, और नहीं तो पहले वाला भी करे। ऐसे करते 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 गए कुछ दिनों में एकदम ऊपर, अर्थात अब भजन होने लग गया, भजन राज्य का हुआ। और जिसको रुचि नहीं हुई अभी गड़बड़ी है। कहने से आरती में आता है, कहने से कोई सेवा करता है, कहने से अर्चन करता है, कहने से हरिनाम करता है, कहने से अन्न भी करता है, कहने से कितना हरिनाम किया देखो, अरे नहीं हो तो 8 बार तो करो, तो आती नहीं जाता तो फिर क्या हो। इसलिए रुचि आएगी तो अब छूटेगा, रुचि होगी इसलिए ये मत खाना। उसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा है, एक एक श्लोक पहले वाले में चेतो दर्पण मार जन्म दिया, दूसरा में दिया नाम नाम कार्य, तीसरे में दिया तिनादपि सुनेच तरोरपि सहिष्णु। ये निष्ठा होने पर ऐसा होगा थोड़ा थोड़ा। और चौथा आया न धनम न जन्म न सुंदरी वा कवितांग जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवदा भक्तुर है। न धनम, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, ये भीतर से हो। जब नाम में रुचि आएगी तब वो सब धन की स्प्रिया संपूर्ण रूप से चली जाएगी। धन माने बहुत प्रकार के धन, इस संसार में धन कहा जाने वाला जो कुछ भी है, अब किसी भी धन में तनिक भी लालसा नहीं रह जाए। यहाँ तक कोई धन भी देगा तो मुझे इसकी क्या जरूरत। एक समय कोई ऋषि थे, वो वन में आराधना करते थे, तो कोई जनक जी के वंश के कोई निमि वंश में कोई राजा थे, तो उनको बड़ा अभिमान था कि हमारे पुरखों के वनों में और निकट में हमारे वो ऋषि रहते हैं और सब उनके दर्शनों के लिए जाया करते हैं, किंतु श्रद्धा होने पर भी वो जाते जा नहीं पाते, राजकाज में सब समय व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनकी इच्छा हुई ये जाएं। उनका मंत्री भी बड़ा श्रद्धालु था, वो भी उनके साथ में कहा जे चलिए दर्शन करने के लिए चला। तो वो घर से बहुत स्वर्ण और सब चीजें काफी धन रथ पर रख कर और चले। जब उनके आश्रम में गए तो उनके चरणों में सब निवेदन करते, सब कुछ निवेदन करते, धन रत्न और जो कुछ था, निवेदन करके प्रणाम करके देखो लंगर आ रहा।
धन लेकर तुम आश्रम में गए,
उनको रख करके प्रणाम करके बैठे। आप किस लिए यहाँ पर पधारे? मुझे आपके दर्शनों के लिए आया यहाँ, बहुत दिनों से लालसा थी, नहीं आ सका था, किस लिए? तो ये सब चीजें किस लिए ले आए? धन और जो चीजें हैं स्वर्ण हीरे जवाहरात ये सब किस लिए? इसलिए ले आए कि आज आपसे दीक्षा लूंगा तो ये सब चीजें आपके चरणों में सबने उठाऊ बोल दूंगा, इसलिए आज मुझे दीक्षा दे दी। उन्होंने कहा अभी जाइए, 25 वर्ष के बाद में आए। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, हमारा हमको ये जानते नहीं होंगे शायद जिस समय यहाँ करा जा। उन्होंने कहा आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं नेमी महाराज के वंश में मैं महाराजा इस समय हूँ। उन्होंने कहा जैसे मैं ये जानता पहले से ही जानता था कि आप, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? तो कुछ और उल्टी सीधी बातें कहने जा रहे थे, मंत्री ने समझाया आपके लिए ये शोभा नहीं देता, ये आपके कल्याण के लिए कह रहे, इसलिए कुछ भी तर्क वितर्क ना करके इनकी बात को मान लीजिए। और मान करके क्यों नहीं आपको दीक्षा आज दिया इस पर विचार करेंगे जाकर के घर पर, और तब फिर आप जब जब करें 25 वर्ष के बाद में फिर आए। उसमें 25 वर्ष का काल कोई अधिक काल नहीं होता था क्योंकि आयु बहुत लंबी होती थी ना, हजारों हजारों वर्ष की आयु होती थी, इसलिए 25 वर्ष का काल कोई नहीं, 25 वर्ष के लिए फिर वो हाथ जोड़ करके चले गए। अब वो रोज ही सोचते हैं कि मैं इतना धनी, इतना प्रभावी, इतना बली, सब प्रकार से योग्य, हमको उन्होंने क्यों लौटा दिया, दीक्षा क्यों नहीं दी? लोग बहुत से आजकल तो कली काल में दीक्षा देने के लिए गुरु लोग लालायित रहते हैं, जो किसी को दीक्षा रास्ते चलते ही बुला करके दीक्षा देते हैं, अपना वो भेजते हैं, दलाल भेजते हैं, आजकल दलाल बल्कि प्रॉक्सी करते हैं और प्रतिनिधि होकर के चारों तरफ में दीक्षा इत्यादि देते हैं, रीति इत्यादि। तो हमको क्यों लौटा दिया, हमारे अंदर में क्या कमी है? सोचने लगे जैसे शायद यही कमी है कि हमारे अंदर में दंभ है, अभिमान है, मैं राजा हूँ और सब दुर्गुण है, इसलिए हमको लौटा। ये करते करते 25 वर्ष में कभी ना कभी ये चिंता करते और उसके लिए अनुतप्त होते, सचमुच में हमारे अंदर में ये दुर्गुण। 25 वर्ष जब हो गया तो उनके मंत्री ने एक उनसे कहा जैसे आज 25वां वर्ष पूरा होने को है, अब आप चल सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं, अब आप शुद्ध हो गए। बड़ी उत्कंठा से उस दिन आज वो सब कुछ नहीं लिया, थोड़ा सा फल और वो लकड़ी होती है ना
हवन के लिए,
हवन के लिए वो सिर पर वो गठरी अपने आप रख कर, और रथ में नहीं गए, रथ में भी जाकर के उनके आश्रम के बहुत दूर ही उसको त्याग कर दिया, राज वेश भी त्याग कर दिया, साधारण वेश में वहां पर पहुंचे और जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो इन्होंने कहा ये तुम कौन हो? अब तो मैं वही हूं जो 25 वर्ष के बाद आपने बुलाया। तो उसके चेहरे की तरफ मैं देखा और बोले ठीक, आज मैं तुम्हें दीक्षा दिया, तुम्हारा वो नशा उतर गया है और धन के बदले किसी को भी खरीद सकते हो, ये भी तुम्हारे अंदर में अभिमान था और धन को ही तुमने सर्वोपरि उस समय मान रखा और तुम्हारे राजा जैसी हैकड़ी थी, मैं राजा हूं, तो ये सब अभिमान का नशा भी उतर गया है, अब तुमको ये कह करके और उनको दीक्षा दी। और वो अत्यंत माने इहो करके रोने लग गए, अत्यंत दीनहीन बन गए। तो ऐसे ही न धनम, धन होने से भागवत की भक्ति में बाधा होती। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना गृहापत्य
पशुभि
साधितस् चले।
काप्रिति साधितस् चले।
कहते हैं ये जो धन है ये कैसा धन है, नित्यार्थी आती को देने वाला, आती माने दुख, ये धन रहने से जरूर आती दुख देगा। एक पिता है बहुत सज्जन आदमी है, अपनी सज्जनताई से अपने कर्मठता से और उन्होंने कुछ धन इकट्ठा, अब उनके चार लड़के हैं, चार लड़के भी साधारण नहीं, बड़े धुरंधर। अब उस धन पर उनकी दृष्टि पड़ने पर पिताजी को भी कष्ट दे करके ये हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो और लड़ाई करते रहेंगे उनकी शांति को उस रुपये के लिए, यहाँ तक कि उनको मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। तना धनम और कहते हैं नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना, वो धन रहेगा तो क्या करेगा, आत्मा को भी मार डालेगा। आत्मा को मारना माने क्या, भगवत भजन से रहित कर देगा, दुर्लभेन आत्ममृत्यु। और गृह उस रूपे से जो संग्रही जो धन जन पुत्र बगीचे पशु आप तो माने कुटुंबी, ये कुटुंबी कैसे होते हैं, पैसे से ही होते हैं। पैसे से लड़के की शादी की, उससे बहू आई, उनसे संबंध हुआ और दूसरे पैसा है ना, तो बुआ वाजी के लड़के इत्यादि जितने आसपास के कुटुंब और ये है ना सब आदर करेंगे और सब आने लगे। और जहां धन नहीं रहेगा तो कोई कुटुंब भी नहीं आएगा। इसलिए आत्ममृत्यु ना, वो आत्ममृत्यु स्वरूप है। और जब उसी से नहीं कुछ हुआ तो उससे जो संग्रहित जो चीजें हैं उनसे कैसे सुख हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए न जन्म, न जन्म जन भी मुझको नहीं चाहिए, न सुंदरी कविता, यहाँ पर सुंदरी को अलग करो तो सुंदरी माने भार्या, और दोनों को एक कर दो तो सुंदरी कविता माने अलंकार युक्त साहित्य और विद्या, विद्या रूपी सुंदरी। हे जगदीश मैं इन सबको कुछ को भी नहीं चाहता, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हे ईश्वर जन्म जन्म में आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सोच विचार करके जब तक यह भाव रहेगा इनमें से किसी चीज की लालसा होगी भगवत भजन ठीक नहीं। इसलिए निष्किंचन होकर के पहले जैसे राजा आया था वो भाव दूर करके निष्किंचन होकर के जब आएगा तब इसका। इसलिए कहते हैं गृह द्रव्य शिष्य पशु धन आदि, ये और जरा व्याख्या करें क्योंकि अनुभव युक्त है ना। भक्ति विनोद ठाकुर गृह द्रव्य, गृह के जो द्रव्य हैं, शिष्य शिष्य को भी ले लिया, शिष्य शिष्या सब उसके अंदर में, वो भी पुत्र से अधिक प्यारा होता है और प्यारी होती है शिष्य भी। पशु, पशु माने गाय बैल, आजकल कुत्ते अधिक प्यारे हो रहे हैं पशु। धन आदि धन, ये सब धन है प्रारंभ से लेकर, स्त्री पुत्र दास दासी कुटुंबादि जन, स्त्री पुत्र दास दासी ये सब जन, ये जन का तार, न धनम न जन। और सुंदरी कवितान काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता, बड़े सभा में चले जाइए और काव्य अलंकार से साहित्य की झड़ी कर दीजिए, सब लोग देख करके आवाज हो जाए, सब लोग वाह अद्भुत। पार्थिव विषय मध्य ये सब वार्ता, ये सब पार्थिव विषय, पार्थ माने जड़ विषय है, ये सब वार्ता, वार्ता माने भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितनी भी वार्ताएं या इनकी वार्ता, ये जो कारण धन जन पुत्र परिवार ये सब कितने इनकी वार्ता, इनकी बातें
शिष्य के धनर मध्य बोले पुत्र के जनर मध्य करना शिष्य के बोलें धन और पुत्र के बोलें जन,
किस भाव से कहा है वो उसको उसमें भी ले लो इसमें भी ले लो कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई आज यदि उसमें उसमें रहेगा तभी कोई हर्ज नहीं, उसको भी छोड़ो इसको भी छोड़ो कहीं से छोड़ना है, यही सब पाई बार आशा नहीं करो, इसके लिए आशा नहीं करते हैं, भगवान से कहते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है, शुद्ध भक्ति दे मोह कृष्ण कृपा करो, कृष्ण जी आप मुझे अपने चरणों में अहित की भक्ति प्रदान करें, प्रेम स्वभाव जहां प्रेम संबंध से ही माने कृष्ण मोर नहीं भक्ति बंध, चैतन्य चरितामृत कार कह रहे हैं कौन कृष्णदास कविराज, ऊपर की तीन लाइन जो है वो कहे चैतन्य महाप्रभु जी और ये चौथी लाइन कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोग प्रश्न करेंगे ये वो तो स्वयं भगवान थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो तो घर बार छोड़ दिए थे, नहीं छोड़ा स्त्री पुत्र माता वृद्ध माता पिता सब कुछ छोड़ करके किंचन होकर के चले गए थे महाप्रभु, तो महाप्रभु जी ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें एक लगा दे रहे हैं, महाप्रभु जी इसलिए कर रहे हैं कि प्रेम का जहां संबंध और प्रेम हृदय में आ जाता है तब वो मानता है जो कृष्ण में मेरी भक्ति नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी से श्लोक को कह रहे हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, वो सबको पार कर गए, वो स्वयं भगवान है, तो भी वो कह रहे हैं क्यों कि जहां पर प्रेम उदित हो जाएगा वहां पर अपने को दीनहीन कोई गुणों से हमारा संबंध नहीं है ऐसा मानने लगे, हम लोगों की अवस्था में या हम लोगों से और जो नीचे वाले हैं ना वो थोड़ा सा नाम करेंगे कि नहीं करेंगे किंतु कोई कह देगा नहीं जानते हो जो मैं भक्त हूं मैं वैष्णव हूं साधारण नहीं हूं ये कह देगा, कुछ भी नहीं छोड़ा तो भी वो कहेगा, उसका भी मान होता है, क्रोध होगा उसे, भिक्षा करने जाएंगे और किसी ने कुछ कह दिया ना तो उल्टे उसको 10 बात सुना देंगे, भिक्षा इसलिए नहीं भेजा गया, गुरु जी भिक्षा के लिए किस लिए भेजते हैं, अभिमान सब दूर हो जाए, सहना सीखो और नहीं तो उसे लड़ाई कर लिया मारा मारी कर लिया, ये उद्देश्य अभिमान छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया, इसलिए कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति जब होती है प्रेम होता है तो वो दीनहीन हो जाता है, साधारण रूप में दीनता नहीं आती, प्रेम जब होगा यथार्थ तो दीनता भी यथार्थ, इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं, पार्थिव धन आदि भक्ति का विरोधी है, पार्थिव धन संसारिक धन से उसको संग्रह मत किया जाए, इससे भक्ति की हानि होगी, विशेष करके गृहस्थों के लिए कुछ छूट है, कुछ परसेंट छूट है, कुटुंब इत्यादि का भरण पालन पोषण करने के लिए अनाशक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कुछ संग्रह कर सकता है, किंतु त्यागियों के लिए ये सब नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे तावद भयं द्रन्न देह सुहित निमित्तं शोकः स्त्रिया परिभवो विपुलश्च लोभः तामन्ममैति असतवग्रहयाति मूलं जावन्नते अङ्घ्रिमभयं प्रविणीत लोकः, ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, उस समय देखा जे हम सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि करना माने बद्ध जीवों के लिए, जीवों का सृष्टि नहीं, बद्ध जीवों को भोगायतम शरीर स्थूल और सूक्ष्म और ये ब्रह्मांड का रूप देना, ये सत्य, ये सहज नहीं है। प्रजाओं को उत्पन्न करना भी सहज नहीं है। आदमी समझते हैं कि पुत्र संतति उत्पन्न करना हमारे हाथ की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे एक लड़की पैदा हो जाता, लड़की पैदा, और मनी से कहा जी लड़का हो तो नारद जी उनके गले से निकल आए। कोई मरीची इत्यादि जी मन से मरीची हो गए, सनक सनंदन सनक कुमार ये सब अजोनी पुत्र उनके हैं। जब जैसे उन्होंने चाहा तब ऐसे सृष्टि, भेड़ बकरे गधे इत्यादि हो तो वो भी हो, जब जो चाहते हैं जैसे। और यहाँ का आदमी व्यक्ति गर्भ में कोई आ गई संतान तो कहते कि लड़का हो, तो लड़का हो जाता है, लड़का हो नहीं हो तो लड़की हो गई, मन खराब हो जाता है। किसी को लड़का होता ही नहीं है ना लड़की, तो वो चाहते हैं कि हमको जैसे भी एक लड़की भी हो जाए, जो कोई भी हो जाए, तो वो भी नहीं। तो ये जगत के लोगों के लिए संभव बात है। इसलिए उन्होंने तपस्या की, पहले किया गोपाल मंत्र से और पीछे से किया काम गायत्री से। इसके बाद में भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन लेकर के वो शक्ति संचरित। इन दोनों मंत्र का फल है भगवान में प्रेम होना, तो भगवान में प्रेम नहीं होकर के शक्ति दे, नहीं संसारिक शक्ति। किस लिए दिया, क्यों दिया? वो जो साधक है उसके अंदर में अभिलाषा क्या है, उस पर बहुत कुछ मंत्र का प्रभाव पड़ता है। है तो हरे कृष्ण ये प्रेम सूचक मंत्र है, काम गायत्री और गोपाल मंत्र भी, किंतु साधक के अंदर में कोई कामना वासना हुई तो सिंह जलपाइयाँ उपशाखा बढ़ी जाए, तो वो उपशाखा बढ़ जाता है और असल चीज रह जाता है। इसलिए वही कामना उनकी।